नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने की दी मंजूरी। उच्चतम न्यायालय ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में 51 परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री मंगल पांडे आज विकसित बिहार के लक्ष्य के लिए औरंगाबाद, बांका और बेगूसराय समेत 9 जिलों के मुखिया से संवाद करेंगे। और तेज पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में औसत तापमान में कमी। मौसम विभाग का अनुमान, 2 दिन के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे सफाई कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा।
हमारे समाज का एक ये वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए इस पे 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। करीब 51 करोड़ खर्चा इस पे आएगा, और जो स्ट्रक्चर है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिससे कि वो देश भर में घूम के देश भर में सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उनको हल कर सके।
श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय के तहत स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने के लिए 8,800 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। 2022-23 से 2025-26 तक इस कार्यक्रम के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है, और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो, और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कृषि विभाग के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 1,007 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री कुमार पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित समारोह में चयनित 54 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पटना के शेखपुरा में प्रदेश के एकमात्र मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल IGIMS में 500 बेड के अस्पताल भवन की 2 विंग का भी उद्घाटन करेंगे। इस भवन से मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री और प्रसूति रोग के मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इन दोनों कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा कृषि मंत्री मंगल पांडे भी शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
राज्यसभा सांसद और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति करने का अनुरोध किया है। श्री झा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार से यह मांग की। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि मिथिला के महान कवि विद्यापति का भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2020 में तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर भी यह मांग की थी। स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे आज प्रदेश के 9 जिलों के मुखिया से संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, रोहतास, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, अरवल और लखीसराय के मुखिया शामिल होंगे। श्री पांडे ने बताया कि इस संवाद का उद्देश्य वर्ष 2047 तक स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करते हुए सशक्त पंचायत, विकसित बिहार का निर्माण करना है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में 51 परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में पटना के बापू परीक्षा सभागार की रद्द परीक्षा वाले 22 केंद्र और 21 जिलों के 19 केंद्र शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट होने पर बीपीएससी और राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर पटना हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1,90,000 शिक्षकों के तबादले के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के उपनिदेशक, उप सचिव तथा सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का तबादला श्रेणी के अनुसार चरणवार होगा। इधर सक्षमता परीक्षा में छूटे उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसिलिंग उनके कार्यरत जिले में 17 से 19 फरवरी के बीच की जाएगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 4 मई को आयोजित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में जमीन की जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को शिविर का आयोजन कर 15 मार्च तक ऐसे मामले निपटाने के आदेश दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। अब पंचायत समिति की योजना पूर्ण करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। वहीं जिला परिषद के लिए योजनाओं को पूरा करने की समय सीमा इस वर्ष 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। चुनाव परिणाम की ताजा स्थिति के अनुसार 64 सीटों के रुझान प्राप्त हुए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 37 और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के बीच है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। तेज पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के औसत तापमान में कमी आई है। रुक रुक कर चल रही तेज हवा के प्रभाव से धूप खिलने के बावजूद ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है।
उपग्रहीय तस्वीरों एवं मॉडल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरें महाकुंभ से। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में एक मंडप स्थापित किया है। इसमें सरकारी योजनाओं और आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित एक आदर्श गांव के मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लगाए गए मंडप में आदर्श गांव को दर्शाया गया है। इसमें विद्यालय, पंचायत घर, आंगनवाड़ी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिए जा रहे रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न सुविधाओं को दर्शाया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मंडप की प्रतिनिधि रिया सिंह ने बताया कि इस मंडप में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है।
महाकुंभ 2025 में एग्जीबिशन लगा हुआ है सेक्टर 7 भारद्वाज थाने के पास। ये एग्जीबिशन जो है ये भारत सरकार द्वारा लगा हुआ है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, अमृत सरोवर हो गया, दीदी की चौपाल हो गई, मनरेगा विकास योजना, उनके ऊपर जितनी भी हम योजना दिखा सकते थे वो हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे दिखा सके।
मंडप में आए एक आगंतुक संदीप ने बताया कि यह प्रदर्शनी गांव की वास्तविक संस्कृति को दर्शाती है।
एक गांव की जो चीजों व्यवस्थित तरीके से सरकार के द्वारा अपने नए नए जो है योजनाओं के थ्रू जो लागू करा के जो है गांव का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उन सारी चीजों को हमने इन छोटी सी जगह में बहुत अच्छे से देख पाया है।
आदर्श गांव का यह मॉडल आर्थिक और सामाजिक रूप से शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांव में हो रहे विकास को प्रदर्शित कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी कामेश्वर चौपाल का अंतिम संस्कार आज सुपौल जिले के मरौना प्रखंड स्थित कमरेल गांव में किया जाएगा। कामेश्वर चौपाल का नई दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया था। पूर्णिया जिले में राज्य उच्च पथ संख्या 65 के फोर लेन और विभिन्न प्रखंडों के पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे संपर्क के लिए सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को कैबिनेट से स्वीकृति के बाद सभी कार्यों को शीघ्रता से पूरा कराया जा रहा है। रोहतास पुलिस ने शिवसागर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान अंतरराज्यीय गिरोह के 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य के विभिन्न कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कल विभिन्न जिलों से 14 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया, जबकि 2 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 11वें दिन लॉन बॉल के पुरुष एकल स्पर्धा में चंदन कुमार का कांस्य पदक तय हो गया है। चंदन आज रजत और स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। वहीं लॉन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा में बिहार की खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति की तिकड़ी ने मणिपुर की टीम को 18-15 से हराकर कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं की ट्रिपल प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल में बिहार का मुकाबला दिल्ली से होगा। बिहार की उम्मीदें एथलेटिक्स, तलवारबाजी, कुश्ती और मॉडल पेंटाथलॉन पर भी टिकी हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नए आयकर विधेयक को कैबिनेट से मिली मंजूरी। अखबार लिखता है, कौशल विकास के लिए 8,800 करोड़ रूपये जारी। दैनिक जागरण ने आरबीआई की रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, घटेगा ब्याज, कम होगी ईएमआई, समिति ने 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से जुड़ी खबर को लीड बनाते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री ने जमुई जिले को दी 890 करोड़ रूपये से अधिक की सौगात। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, इसरो ने सैटेलाइट से बिहार में खोजी 4,500 आद्र भूमि, 1,000 का सत्यापन। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने की दी मंजूरी। उच्चतम न्यायालय ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में 51 परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री मंगल पांडे आज विकसित बिहार के लक्ष्य के लिए औरंगाबाद, बांका और बेगूसराय समेत 9 जिलों के मुखिया से संवाद करेंगे। और तेज पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में औसत तापमान में कमी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 2 दिन के बाद तापमान में होगी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।